ओम शांति। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे, आप उस पे चिंतन भी करेंगे। हमें पाप समान बनना है। कल बाबा मुरली में कह रहे थे, अंत में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। किन्हें होंगे? जो योग युक्त होंगे, जो अंत तक रहेंगे। तो हमें साक्षात्कार भी होंगे और हम भी साक्षात्कार कराएंगे। और साक्षात्कार कराना ये उनके द्वारा ही होगा जो बाप समान होंगे। तो जैसे बाबा के संस्कार वैसे ही हमारी संस्कार हो, जैसा बाबा का चिंतन वैसा ही हमारा चिंतन हो, जैसे बाबा के बोल वैसे ही हमारे हो। सभी चिंतन करेंगे। मैं एक दो बात से शुरू कर देता हूँ। इसमें दोनों, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा ने सारे गुण और संस्कार प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा दिखाए, और शिव बाबा को हम उसकी मुरलियों से या अपने योग के अभ्यास से पहचानते जाते हैं। शिव बाबा को पहचानना केवल बुद्धि के द्वारा संभव नहीं होता। देखते हैं हम उसे सामने, कैसा है वो, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं। भोलानाथ है तो क्या है इसका मीनिंग? प्यार का सागर है तो कैसे सब में प्यार बांटता है? तो बाबा की एक बहुत बड़ी महानता उदारता, खुला दिल, खुले विचार। सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्या है उदारता? सोच लें, सभी माताएं भी सोच लें। उदार होना अर्थात कंजूस न होना, सीधी भाषा। विशाल दिल होना, जो उदार चित्त होते हैं वो छोटी छोटी बातों में नहीं अटकते, उनकी परवाह नहीं करते। छोटी बातें उनके लिए कुछ नहीं होती। आजकल संसार छोटी बातों में उलझ गया है। इसने मुझे मान नहीं दिया, इसने मुझसे ऐसे शब्द बोले। बहुत मनुष्यों पर दूसरों के बुरे शब्दों का बुरा असर ज्यादा होता है। बाबा हर फील्ड में उदार चित्त थे। अब जानते हैं, जब बाबा यहाँ थे साकार में, तब यज्ञ की आर्थिक स्थिति कोई बहुत बड़ी नहीं थी। धन संपत्ति यज्ञ में कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। अर्जुन भाई जानते हैं ना, तो भी बाबा कहा करते थे, बच्चे खाने पीने में वस्त्रों में ज्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए खाने पीने के पीछे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। घरों में कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, पैसा भी होता है लेकिन न उस पैसे का सुख स्वयं लेते न परिवार को दे पाते। हमें बाप समान बनना है तो संस्कारों की समानता आवश्यक है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का एक गुण संस्कार आपने सुना होगा, तुरंत करो, अभी अभी करो। जो डिले करते हैं, जो देरी करते हैं, जो चलाते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, वो बाबा को पसंद ही नहीं थे। अभी करो। इसको बाबा फरमानदार कहते थे, फरमान मिला और तुरंत करने लगे, इससे भोलानाथ राजी हो जाता है, वरदान दे देता है। आप सभी ने शायद जगदीश भाई की कहानी सुनी हो, कैसे उन्हें लिखने का वरदान मिला और बाबा ने कैसे उन्हें निमित्त बना दिया अपने इस बहुत बड़े काम में, क्योंकि साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। जितना सुंदर साहित्य किसी के पास होगा उतना ही सुंदर प्रभाव समाज पर उसका पड़ता है। तो जगदीश भाई ने साहित्य की रचना की। सुना देता हूं आपको वो कहानी। जगदीश भाई आए बाबा के पास, और भी कुछ भाई बहने थे। बाबा ने काम दिया कुछ रात्रि क्लास में कि कल सभी बच्चे इस पर लिख कर लाएं। अचानक चली गई लाइट रात को, क्योंकि 9 बजे से क्लास होती थी, 9:30-10 तक फिर चली गई लाइट। बहुतों ने सोच लिया कि अब तो लाइट ही नहीं है, बाबा को भी तो पता है कि लाइट चली गई है, कल लिखेंगे, बाबा तो जानते ही हैं लाइट नहीं थी। लेकिन जगदीश भाई ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा सदगुरु का ऑर्डर है, अभी करना है। वो बाहर आए और जो थोड़ी सी लाइट जल रही थी रोड पर, उसके नीचे बैठकर लिख दिया। सवेरे जब बाबा ने पूछा किस किस ने लिखा, तो केवल एक जगदीश भाई ही थे। राजी हो गया भगवान, सब कुछ सुख सुविधाएं हो और फिर हम उसकी आज्ञा का पालन करें तो हमारा महत्व नहीं, कुछ न हो, असंभव हो चीज, और हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करें। बस राजी हो गया था भोलानाथ, वरदान दे दिया, अब से तुम लिखा करो, मैगजीन निकालने के लिए कह दिया। तो देखिए बाबा का ये बहुत बड़ा गुण था, संस्कार था, हम भी इस संस्कार को अपने अंदर अपनाएं, सोच लें, अपने को देख लें, जो कुछ बाबा हमें करने को कहते हैं वो हम करते हैं या सोचते कुछ और हैं। सब अपने चिंतन पे दृष्टि डालें। बाबा ने कहा फरिश्ते की ड्रेस पहनो। बहुतों ने सोच लिया होगा हम तो बहुत बिजी हैं, ये अपने बस का नहीं है, जो सरेंडर हैं वो कर सकते हैं। बहुतों ने सोच लिया होगा कुछ दिन करके, भाई रोज रोज करके तो बोर हो रहे हैं, ड्रेस दूसरी चाहिए अब तो, एक ड्रेस पहनते पहनते बोर हो जाते हैं ना, इसलिए बाबा ने हम सबको सफेद ड्रेस दे दी कि बोर हो ही नहीं। तो छोड़ दिया है अभ्यास करना, लेकिन जिन्होंने दृढ़ता पूर्वक अभ्यास चालू रखा है उन्हें बाबा का बल मिलता ही रहेगा और नए नए अनुभव होते ही रहेंगे। इसलिए अभी अभी करो, बहुत राजी होते हैं बाबा। हम ये बात यदि जानते नहीं तो जान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। लौकिक में भी यही है, साइकोलॉजी ये है, आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें काम करने को कहो वो तुरंत कर दें तो कितना अच्छा लगेगा, प्यार हो जाएगा बच्चों से, और जो बच्चे काम चलाते हैं उन्हें फिर आप काम कहेंगे भी नहीं कि ये तो करता नहीं है। बाबा भी हमें काम देता है, तुरंत करने से परिणाम बहुत सुंदर मिलते हैं। अब आप आगे चिंतन करेंगे कौन कौन से हैं बाबा के संस्कार। बहने बोलेंगी बेफिकर बादशाह है बाबा, बहुत बड़ी क्वालिटी रही है। शिव बाबा तो है ही बेफिकर, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ दूं, साक्षी भाव। तो बाबा तो बेफिकर है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अपने पूरे जीवन काल में बेफिकर रहे। सबने यज्ञ का इतिहास सुना है, शुरू से ही विरोध प्रारंभ हुआ, बेगरी पार्ट आया, जो बहुत एक ऐसा समय था किसी भी माँ बाप के लिए कैसी दयनीय स्थिति हो सकती है कि उसके पास 380 बच्चे खाने वाले हों और खिलाने को कुछ न हो। लेकिन ये बाबा के निश्चय की ऐसी सुंदर परीक्षा, सूक्ष्म परीक्षा थी जिसमें वही संपूर्ण पास हुए। कोई चिंता नहीं, कल का कोई फिक्र नहीं, क्या होगा, कल ये कहां से खाएंगे। ड्रामा के ज्ञान पर, शिव बाबा पर संपूर्ण विश्वास। आजकल हम क्या देखते हैं, सभी इस बात को पक्का करें अपने जीवन में। आप भी देखते होंगे, मैं बहुत देखता हूं परिवारों में, जरा सी परीक्षा आ गई, डगमगाने लगे, बाबा ये नहीं कर रहा है, बाबा मदद नहीं कर रहा है। किसी ने मुझे अभी फोन किया, क्लास से पहले ही, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया दूसरी जगह, आता ही नहीं है, अब अशांति कर दी है घर में, क्या करूं, बाबा क्यों नहीं मदद करता मुझे। मैं तो 18 साल से बाबा की बच्ची हूं, मैंने बाबा के लिए बहुत कुछ किया है, बाबा मुझे मदद नहीं करता, बाबा उसकी बुद्धि को क्यों नहीं ठीक करता। मैंने इसकी सब बात सुनी और उसको दो विधि बताई कि ऐसा करो। अब माता की समझ में नहीं आ रही विधि, विधि छोटी सी लेकिन उसको है, बाबा कर देना। मैंने फिर उसको साथ बोला, अगर तुम ये सोचती हो कि बाबा कर दे तो वो कर देगा, लेकिन इंतजार करो, हो सकता हो 10 साल के बाद करे। अगर तुम चाहती हो कि अभी का हो जाए तो वो करो जो मैंने आपको बताई, वो विधि बाबा की है, मेरी थोड़ा ही है। तो मैं देख रहा था कि आत्माएं कुछ चीजों को समझ नहीं पा रही हैं। मैं बहुत ओपनली आपको एक चीज बता देता हूं जो मैंने उसको बताई। सबको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारा पवित्रता का मार्ग है, इसमें हमें कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं। मैंने उसको पूछा, मालूम है तुम्हारा पति क्यों गया है बाहर? भाग नहीं गया है, पर इससे अलग रहने लगा है जाके, कहता है मैं घर में नहीं आऊंगा, तो मेरी बात नहीं मानती। मैंने इससे पूछा, मालूम है तुम्हारा पति क्यों गया है बाहर? कहा, मुझे तो पता नहीं, बहुत दिन से झगड़ा करता रहता था। मैंने उसे बताया, सबके लिए बता रहा हूं, सावधानी की आवश्यकता है। मैंने उसे बताया कि उस व्यक्ति में इस समय काम विकार का फोर्स अति बढ़ गया है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुमसे लड़ता है, इसलिए बाहर चला गया है। अगर तुम उसको रोज आधा घंटा योगदान दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, उसको पवित्र वाइब्रेशंस दो, तो उसकी अपवित्रता का जो वेग है वो शांत हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं उसका तुमसे प्यार नहीं है, पर उसका प्यार क्योंकि विकारों से भी है, इसलिए अशांति हो रही है। मैंने आप सबको ये बात इसलिए कही कि हम द्वापर युग से जिन मनोविकारों के वश रहे थे, जिन्होंने उन मनोविकारों को नष्ट नहीं किया है, उसमें भी काम क्रोध, आने वाले समय में ये दोनों विकार मनुष्यों को बहुत सताएंगे और बहुत लोग ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे। इसमें बात निश्चय की नहीं होगी, निश्चय तो उन्हें है, लेकिन वो अपनी पवित्रता को कायम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और योग के बल से पवित्रता को बढ़ाया नहीं है, केवल दबाया हुआ है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि पवित्र रहना है, इसलिए रहना है, लेकिन केवल ये बात किसी को पवित्रता का सुख नहीं दिला सकती। योग बल के बिना आत्मा पवित्र नहीं बनती। जो लोग केवल अपनी पवित्रता को दबाए हुए हैं, मैं फिर ओपनली एक बात और बता देता हूं, कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं पवित्रता में, हमें पवित्र रहना है, कोई हमें छू भी नहीं सकता, हम कहीं बाहर का भोजन भी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर योग बल अच्छा नहीं है तो उनमें क्या दिखाई देगा? चिड़चिड़ापन, व्यवहार की कटुता, बढ़ता हुआ ईर्षा द्वेष, आलस्य, ये दिखाई देगा आत्माओं में। इसलिए हमें पवित्रता का सुख लेना है योग बल से। हम अपनी साधनाओं पर बहुत ध्यान दें, बिना आत्मिक दृष्टि के, बिना शरीरीपन के अभ्यास के, बिना अच्छा योग लगाए पवित्रता नेचुरल और सुखदायी नहीं हो सकती। तो बाबा के भी संस्कार, दोनों बाबा के संपूर्ण पवित्र। हम इस सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देंगे। जिनको अंत तक जीने की इच्छा है, बात शरीर से जीने की नहीं, शरीर तो जब जिसका छूटेगा सो छूटेगा, ये उस पर तो किसी का अधिकार नहीं। जो ज्ञान में अंत तक जीना चाहते हैं और इस संसार के परिवर्तन का सुंदर खेल देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी पवित्रता की शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा। साक्षी भाव, बाबा शिव बाबा भी इस संसार को साक्षी होकर देखता है, हमें भी संसार को साक्षी होकर देखना है। ब्रह्मा बाबा ने भी सभी आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखा, रोज कम से कम एक बार सभी को साक्षी भाव की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। बैठ जाए शांत में, देखें सोचें, ये संसार का खेल सतयुग से कलयुग अंत तक कैसा चलता आया है। चिंतन करेंगे, बहुत सुंदर चिंतन। साक्षी भाव स्वदर्शन चक्रधारी होने से ही आता है। साक्षी भाव गामा के ज्ञान को संपूर्ण रूप से यूज करने से ही आता है। तो क्या क्या चिंतन करेंगे, मैं याद दिलाता रहता हूँ वो पांच बातें, सभी उस पर फिर से ध्यान दें और एक टाइम निश्चित कर लें जब एक बार रोज साक्षी दृष्टा होने का ध्यान दें। कितना सुंदर खेल चल रहा है, ये संसार एक खेल है। यहाँ सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। दूसरा संकल्प, तीसरा बहुत अच्छा संकल्प जो हमें निश्चिंत करता है, यहाँ सभी का अपना अपना भाग्य है, सब समान नहीं हो सकते। जो माताएं अपने बच्चों के भाग्य की चिंता करती हैं, वो चिंता करना आप छोड़ दें जरा। चिंताएं करती हैं ना माताएं, हमारे बच्चों का क्या होगा। सब अपना अपना भाग्य लेकर ही जन्मे हैं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति से उनका भाग्य निर्माण कर सकते हैं। हम सभी अपने लिए भी मास्टर भाग्य विधाता हैं और दूसरों के भाग्य निर्माण का अधिकार भी हमें दिया गया है। इसलिए भाग्य विधाता एक ब्रह्मा को कहा जाता है और दूसरा सरस्वती को। भाग्य विधाता वो भाग्य की रेखा खींच देती है। भक्ति में मान्यता है बच्चे ने जन्म लिया और देवी आकर उसके भाग्य की रेखा खींच जाती है, और अब बाबा ने हम सबको भाग्य बनाने का सुंदर अधिकार दिया है। तो सभी का भाग्य अपना अपना है, चिंता की बात नहीं। अब भाग्य बढ़ाना है, भाग्य हमारे हाथ में आ गया है, हम उसको जितना चाहे बढ़ा लें। एक समय था चारों युग हम भाग्य के हाथ रहे। ये चर्चाएं संसार में भी आचार्यों के बीच होती आई हैं, भाग्य बढ़ा या कर्म बढ़ा। चारों युग मनुष्य आत्माएं भाग्य के वश रही हैं, भाग्य निर्माण भी किया है कर्म से, क्योंकि भाग्य निर्माण श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा होता है। सतयुग त्रेता में हम भाग्य निर्माण नहीं करते, जो भाग्य हमने बनाया उसका भोग करते हैं। द्वापर युग के बाद भी हम अपने कर्मों के अनुसार भाग्य पाते हैं और भाग्य के वश भी रहते हैं, लेकिन इस समय भाग्य हमारे अधीन है, हमारे हाथ में आ गया है भाग्य, हम जितना चाहें अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लें, योग बल से, सेवाओं से, पुण्य कर्मों से, त्याग से, वैराग्य से हमारा भाग्य बनता जाता है। बहुत अच्छा एक बाबा का महावाक्य है, प्रति क्षण यदि तुम देह भान का त्याग करते हो तो प्रति क्षण ही तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण होता है। चौथी बात, इस संसार में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ध्यान दें आप सभी, अपने को याद दिलाएंगे रोज एक बार, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ या दूसरों के साथ, यज्ञ में या यज्ञ के बाहर, पॉलिटिक्स में या धर्मों के क्षेत्र में, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, और यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। इस संसार के खेल में सभी आत्मा एक्टर्स हैं, निर्दोष हैं। इन पांचों बातों को रोज एक बार अपने को अवश्य याद दिलाना है, ताकि ये हमारे अंतर मन में समा जाएं और हमारा साक्षी भाव बढ़ता चले। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मैं बाबा का वो महावाक्य आपको सुना दूं जो बहुत गहन है, बहुतों की समझ से परे हो सकता है। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं उनका एक मास का काम एक घंटे में ही पूरा हो जाता है। ध्यान देंगे, जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, चिंतन करेंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साक्षी भाव से हमारी आत्मिक शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए हमारी कार्य क्षमता, कार्य करने की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। कम समय में ज्यादा काम होने लगते हैं। दुनिया में अपने को भी हम सब देख सकते हैं, बहुत लोग ज्यादा समय में थोड़ा सा काम कर पाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिसकी जितनी योगयुक्त स्थिति उनके काम उतने ही जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। लौकिक में भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी योगयुक्त स्थिति, जितनी साक्षी दृष्टा की स्थिति, काम कम समय में ज्यादा पूर्ण हो जाएंगे। सभी ये प्रयोग करके देखें अपने जीवन में। शुभ भावना, शुभ कामना, सुख देने के संस्कार। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, बाप की दृष्टि तो नेचुरल रूप से आत्मा पर ही जाती है, बाप के संस्कार हैं ही ज्ञान देने के, सुख देने के, सभी आत्माओं को आगे बढ़ाने के। हम इन तीनों बातों पर ध्यान दें, क्या बाबा जैसे ही सुखदाई हम भी बने हैं, क्या बाबा जैसी शुभ भावनाएं हमने भी अपनाई हैं, क्या बाबा जैसे हमारी दृष्टि भी आत्मा पर ही जाती है। सुख देना, कौन दे सकते हैं दूसरों को सुख, जो सुखों से संपन्न होंगे। और दूसरी बात, बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, जिनके जीवन में दुखों की लहर नहीं आती, जो लंबा काल तक दुखों की लहर से मुक्त रहे हैं, वो दूसरों को सुख देंगे। आने वाला समय कैसा होगा? कल बाबा की मुरली में था, बाप आते हैं हाहाकार को समाप्त करके जय जयकार कराने। हाहाकार होगा संसार में, होता जा रहा है। अभी सुन रहे थे ना, कोई रोग बढ़ता आया है, फ्लू, महामारी का रूप ले सकते हैं रोग, अभी तो फिर भी कंट्रोल किया जाता है बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है कि कोई रोग सारे संसार की कंट्रोलिंग पावर से बाहर निकल जाए। ऐसे में हम सभी को दूसरी आत्माओं के दुख हरने होंगे अपनी दृष्टि से और बोल से, दुख हरने होंगे अपने वाइब्रेशन से, लंबा काल दुखों से मुक्त रखना है खुद को। दुख बढ़ता जा रहा है, उसकी छाया हम पर ना आए, हम ज्ञान का प्रयोग इतना सुंदर करें कि दुखों की बातें हमें सहज समाप्त करने का बल रहे, ये नहीं दुखों में हम दुखी होते रहें। अपने पास ये स्लोगन रख दें, यदि हम दुखी होते रहेंगे तो दूसरों के दुख कैसे मिटाएंगे। बाबा बहुत अच्छा काम दे गए ना हमें आखिरी मुरली में, आखिरी में था या उससे पहले, तुम्हें मुक्ति का वरदान देना है सबको। कौन दे सकेंगे निर्वाण में, कौन ले जा सकेंगे? जो कारणों का निवारण करेंगे। इसका अर्थ है कोई भी कारण हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ से रोक न पाए। सभी अपने को देख लें, हर एक के पास कुछ कारण होते हैं। हम तेज पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर पाते, हमारे पास काम बहुत है भाई। हमारा तेज पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो पाता, हम अकेले ज्ञान में चलते हैं, बाकी कोई नहीं चलता, सब डिस्टर्ब करते हैं। हमारा तेज पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, शरीर अब साथ नहीं देता, बीमार रहने लगे हैं, है ना ये कारण? और भी कारण, माताएं कहेंगी मेरी बहू बहुत तंग करती है मुझे, तो कोई भाई कहेगा बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, हमसे तो पुरुषार्थ होता ही नहीं। क्यों कहते हैं बाबा लंबा काल का पुरुषार्थ चाहिए? ध्यान दें सभी, जिनका लंबा काल का पुरुषार्थ नहीं है, अब भी छोटी छोटी परिस्थितियां उनके पुरुषार्थ को जीरो पर ले आई हैं, अब भी ये हो रहा है, और विनाश काल में तो ये प्रत्यक्ष होगा। जिन्होंने लंबा काल पुरुषार्थ नहीं किया होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें उनको भी मदद करनी पड़ेगी। जिन्होंने लंबा काल हर तरह का पुरुषार्थ, केवल योग का ही नहीं, दुखों से मुक्त रहने का, अचल अडोल रहने का, एक रस स्थिति में रहने का, त्याग और वैराग्य अपनाने का लंबा काल अभ्यास किया है साक्षी भाव का, वो स्थिर रह पाएंगे। तो हमें स्वयं को सुखों से भरना है। हमारे पास कौन से सुख हैं? सोचो, सुख तो संसार में भी कई लोगों के पास हैं। हमारे पास है, एक ही शब्द देंगे उसे, ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख।
ओम शांति
शांति,
ओम शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अपने आप को जानो। अंधेरा
संसार में भी कई लोगों के पास हैं, हमारे पास है एक ही शब्द देंगे उसे ईश्वरीय सुख, अतिंद्रिय सुख, जिसके बारे में हम जानते हैं। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो या हमसे पूछो, माताएं क्या कहेंगी? जो कहेंगी हमसे पूछो वो हाथ उठाओ जरा, थोड़े ही हैं, ठीक है। भाई हाथ उठाए, ठीक है, भाई थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। अतिंद्रिय सुख उन्हें प्राप्त होता है जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। मुरली में आ चुका है, तुम्हारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आत्माभिमानी होना। आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना, केवल मैं आत्मा हूं ये नहीं, आत्मा के सभी गुणों का स्वरूप बन जाना, तो हमें बहुत सुख मिलता है। जब हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, वो सुख मुरली पढ़ने से नहीं मिलेगा, या मिलता है पढ़ने से भी? कई लोग सोचते हैं मुरली 10-20 बार पढ़ ली जाए, वो तो ऐसे हो गया जैसे कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना लौकिक में, किताब लिए बैठे ही रहते हैं, रटते रहते हैं। लेकिन जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उन्हें ऐसा रटने की जरूरत नहीं होती। हमारी ज्ञान मुरली केवल ज्ञान के लिए नहीं है, ध्यान दें और इस बात का सुख प्राप्त करें, स्वयं भगवान अपनी आत्माओं से बात करता है। ये है ना मुरली, भाषण नहीं करता, बाप अपने बच्चों के बीच में भाषण नहीं किया करता, बात करता है। आप इस दृष्टि से, ऐसी फीलिंग में बैठकर मुरली सुने, भगवान मुझसे बात कर रहा है। देखो कल बात की थी ना बच्चे, मैंने तुम्हें स्वर्ग की रजाई दी थी, बहुत धन संपदा दी थी, कहाँ गया? पूछ रहा था ना बाप अपने बच्चों से, क्या किया तुमने, इतना सब कुछ दिया था सब गंवा बैठे, फिर आ गया हूँ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने के लिए। ये बात कर रहा है ना वो हमसे, या भाषण है? देखो इस तरह मुरली सुने तो मुरली का एक घंटा बहुत सुखों में बीत जाएगा। सभी मुरली का सुख लेते भी होंगे, आज से कल से बहुत सुख प्राप्त करें। इसलिए मुरली से कम 15 मिनट आकर योग अवश्य करें। यहाँ यही होती है ना मुरली क्लास, 15 मिनट अपने चित्त को स्थिर करें, संकल्प भरें, भगवान पढ़ाने आने वाला है। आ रहा है अपना धाम छोड़कर हमारा श्रृंगार करने, अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ अपने को ईश्वरीय नशे में ले चलें, तो मुरली का बहुत सुख आएगा। सभी अपने अंदर निश्चय करें, दृढ़ता लाएं, ठीक है सवेरे मुरली में नहीं जा सकते, शाम को जाएं और मुरली का सुख प्राप्त करें। ये सुख भरते भरते आत्मा सुख संपन्न हो जाएगी। योग से भी सुख मिलता है, मुरली से भी सुख मिलता है, दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है। सेवा में आए हैं आप सभी, सेवा में सुख मिलता है ना, सेवा में भी बहुत सुख मिलता है। सच्चे दिल से की गई सेवा, निष्काम भाव से, निमित्त भाव से, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा आत्मा की थकान उतार देती है। और अगर इच्छा रहे मैंने इतनी सेवा की मुझे पूछा ही नहीं, तो थकान हो जाएगी। इसलिए निष्काम भाव से, सच्चे दिल से बाबा के यज्ञ की सेवा करते रहें, भगवान भी राजी होता है। सेवा के पीछे लक्ष्य ये हो, हमें यज्ञ को संभालना है, हमें यज्ञ की सुरक्षा करनी है। हम अपनी श्रेष्ठ धारणाओं से यज्ञ को बल देते हैं। किसी की भी कमजोर धारणाएं यज्ञ को कमजोर बनाती हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे यहाँ हो। हमारी सुंदर पवित्रता यज्ञ के लिए किले का काम करती है, किसी की अपवित्रता यज्ञ को खोखला बना देती है। तो हम सच्चे दिल से यज्ञ के रक्षक ब्राह्मण, जिन्हें यज्ञ रचकर ब्रह्मा ने हाथों में सौंप दिया है अपना यज्ञ, जिन ब्राह्मणों के, हम सब वो ब्राह्मण हैं जिन पर भगवान ने विश्वास किया है ना, ये मेरे यज्ञ को फर्स्ट क्लास चलाएंगे। हम अपनी भावनाओं को ऐसा ही श्रेष्ठ करेंगे, बल मिलेगा बाबा का, सुख भरेगा आत्मा में, और ये सुख हमें बहुत काम आने वाला है आने वाले दिनों में। और हम विचार करें बाबा के संस्कार कैसे हैं, बोलो भाई बोलेंगे, कोई एक संस्कार सुनाओ बाबा का। क्षमाशील, और एक सुनाओ। विश्व कल्याण का, और एक। रहम दिल और हाँ एवर रेडी भी, वही जल्दी जल्दी। और सबको प्यार देने का, दातापन का संस्कार, लेने का कुछ नहीं देने का ही संस्कार। देने वाला सदा ही महान होता है, लेने वाले वो भी महान होते हैं। देने वाला तो सदा ही महान होता है और लेने वाले सदा ही मांगते ही रहते हैं, मांगने के संस्कार पड़ जाते हैं। अपने पास सब कुछ होते भी नजर कहाँ जाती है, दूसरों की अच्छी चीज पर। बाबा बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, मुझे साकार के समय से ही बाबा का ये शब्द बहुत प्यारा लगता था। आपने सुना है, फिर से सुने, तुमको वफादार बनना है। वफादार माना तुम्हारी आंख कहीं भी डूबे नहीं, न किसी की सुंदरता में, न किसी की धन संपत्ति में, न किसी की पर्सनालिटी में, आंख डूबे नहीं। समझते हैं ना इसका, आंख नहीं डूबे। हम तो दाता हैं, सबसे महान हैं, भरपूर हैं, पूर्वज देने वाले हैं, हम भी दाता बन कर रहे हैं। मान भी, हमें मांगना नहीं है, मांगने वाले कभी माननीय नहीं बनते। बाबा का महावाक्य सुना होगा, माननीय बनना है तो मान दो, स्वमान में रहो। मान केवल स्थूल बात नहीं है, दूसरे के विचारों का सम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दिल से दूसरों के प्रति ऊंची भावना रखना ये सम्मान है। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में लोग सम्मान देते हैं ना, भाई अंदर जाएंगे जूते बाहर निकाल के जाएंगे, सामने से भी गुजरेंगे नमन करके गुजरेंगे, सम्मान देकर निकलते हैं। हमारे भारत की ये कल्चर ही थी बड़ों को सम्मान देना, अब ये खत्म हो गई है। हम फिर से ये परंपरा प्रारंभ करते हैं, सबको सम्मान देना। इससे हम माननीय बन जाते हैं, संसार हमें सम्मान देगा, हमारा चित बाबा की तरह ही क्षमा भाव से, रहम भाव से, विश्व कल्याण के भाव से भरा हुआ होना चाहिए। बहुत सुंदर बातें हैं ये। आज मनुष्य के चित्त में बदले का भाव ज्यादा भरा हुआ है, इस बदले की भावना ने ही क्रोध का भाव भर दिया है। बहुतों के प्रति मन में क्रोध रहता है, सूक्ष्म छुपा हुआ रहता है, हम इनसे बदला लेंगे, इन्हें ठीक करेंगे, इन्होंने हमसे ऐसा बुरा बुरा किया है। लेकिन बदला लेने वाले कभी महान नहीं बनते, महान बनते हैं क्षमा कर देने वाले, ठीक है ना। गायन किनका है? जिन्होंने क्षमा दान दिया। गायन उनका नहीं है जिन्होंने बदला लिया। महान पुरुष वो हुए जो क्षमा दान देते रहे। बदले लेने वालों को इतिहास उल्टी दृष्टि से ही देखता है, ये खराब लोग थे, ये खराब शासक थे, शासक भी जिन्होंने बदला लिया है, जिन्होंने दूसरों के क्षमा भाव को भी गलत लिया, वो खुद भी नष्ट हो गए, उनकी वंशावलियां नष्ट हो गई, उनका नाम नहीं रहा। और जिन्होंने क्षमा भाव दिखाया दुश्मनों पर भी, इतिहास भी उनका नाम लेता है, उनको महान कहता है। देखो आपने सम्राट अशोक का नाम सुना है, उसके साथ ये बात जोड़ दिए, अशोक द ग्रेट, महान। बहुत सारे इतिहासकार पूछते हैं अशोक क्यों महान था, उसने तो ये किया ये किया ये किया, लेकिन पीछे किया महान जब से बना तब से वो बहुत महान रहा। बौद्ध धर्म के लिए सारा काम अशोक ने ही तो किया, अहिंसा का पाठ उसने ही तो सिखाया सबको। तो हम अपना चित्त कल्याण की और शुभ भावनाओं से भरें। कल्याण की भावनाएं, शुभ भावनाएं, सभी रोज कुछ क्षणों के लिए अपनी छत पर जाकर जरा विचार किया करें, मुझे तो विश्व का कल्याण करना है, हम विश्व कल्याणकारी हैं, जनम जन्म भी जिन आत्माओं ने हमें कष्ट दिया है हम उन्हें भी क्षमादान देते हैं, कट जाएंगी बंधन रस्सियां, हमसे अच्छे वाइब्रेशन संसार को जाने लगेंगे। ये बहुत बड़ा काम हमारे द्वारा होना है, क्योंकि हम सब पूर्वज हैं, हमारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करेगी, हमारी शुभ भावनाएं भी इस संसार की अनेक दुखी आत्माओं को सुख देंगी। ध्यान दें सभी, कौन है हम सब? पूर्वज, महान आत्माएं, इष्ट देव देवियां। अंडरलाइन कर लें, हमारी शुभ भावनाएं संसार की दुर्भावनाओं को समाप्त करेंगी, हमारी शुभ भावनाएं इस संसार के कमजोर मनुष्य आत्माओं के लिए सहारा बन जाएंगी, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के जीवन में सुखों का संचार करेंगी। हम बहुत महान हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स, स्वयं भगवान के वरदान हमारे साथ हैं, उनको पहचानते हुए सभी अब महानता के पथ पर चलेंगे। सवेरे और शाम के समय को अच्छे योग अभ्यास में बिताते हुए सभी यहाँ से अपने भंडार भरपूर करके ही जाएंगे। ओम शांति।